गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवारधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupad 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 Prabhupad
Jayam Vishnupad Paramahans Parivrajakacharya Shloka Shashishi Jivan Jesu Gatti Vedanta Swami Shila Prabhupada Ki Iskon Beauty Founder Acharya Shila Prabhupada Ki Samved Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Granthra Shrimad Bhagavatam Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai Itai Gaur Premanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudire Nashta Praeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Grantha Shrimad Bhagavatam Chaturtha Skand Adhyay 22 Adhyay ka shirshak hai Charo Kumaro se Prithu Maharaj ki bhet श्लोक संख्या 58 कृपया पीछे दोहराइए वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोधः Satvena Achala Rat Iva Varshati Smayatha Kamam Varshati Smayatha Kamam Parjanya Iva Tarpayan Parjanya Iva Tarpayan Samudra Iva Durboda Samudra Iva Durboda Satvena Chalaradiva सत्वेनाचलराडिव वर्षति स्म यथा कामम् पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्वेनाचलराडिव वर्षति स्म यथा कामम् पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्वेनाचलराडिव वर्षति वरस्ते स्म थे यथा कामम् इच्छानुसार पर्जन्यः जल इव के सदृश तर्पयन् प्रसन्न करते हुए समुद्रः समुद्र इव के सदृश दुर्बोध न समझ में आने वाला सत्वेन सतात्मक स्थिति से अचल पर्वत राट इव राजा के समान अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी श्रील प्रभुपाद की अनुवाद जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती है उसी तरह महाराज पृथु सबों को तुष्ट रखते थे वे समुद्र के समान थे क्योंकि कोई उनकी गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकता था और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वतराज मेरु के समान थे। तात्पर्य दुखी मनुष्य पर महाराज पृथु की दया अत्यधिक ताप के बाद जलवर्षा के समान होती थी। समुद्र इतना विस्तृत होता है कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई नापना अत्यंत कठिन होता है। इसी प्रकार पृथु महाराज इतने धीर तथा गंभीर थे कि कोई उनके प्रयोजनों की था नहीं पा सकता था। मेरु नामक पर्वत ब्रह्मांड की धुरी के समान स्थित है और कोई इसे एक इंच भी नहीं हिला सकता। उसी प्रकार महाराज पृथु के निश्चय कर लेने के बाद कोई उन्हें उस निश्चय से डिगा नहीं सकता था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् हरे कृष्ण सर्वप्रथम समस्त वैष्णव का यहाँ पर आशीर्वाद लेकर श्रीमद् भागवत के विषय में कहने का हम प्रयास करेंगे। वर्षति स्म यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध सत्वे नाचल राडि यहाँ पर महाराज पृथु के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। पिछले कुछ श्लोकों से प्रारंभ हुआ है अलग अलग गुणों का वर्णन, और श्रीमद् भागवत में प्रारंभ से अंत तक हम कई बार श्रवण करते हैं अलग अलग वैष्णव के गुणों का वर्णन किया जाता है, और उसमें विशेष रूप से 26 गुण जो बताए गए हैं उनके विषय में काफी विस्तृत चर्चा की गई है, और विभिन्न विभिन्न प्रसंगों में लीलाओं में वैष्णव उन गुणों को प्रदर्शित भी करते हैं। तो मैं जैसे कल रात्रि को मुझे बतलाया गया क्या कुछ कहना, तो मैं पिछले प्रभुपाद के विभिन्न स्थानों पर कहां कहां प्रभुपाद ने उल्लेख किया है इन गुणों का, उनको जब देख ही रहा था तो मैंने इस बात की अनुभूति की कि श्री प्रभुपाद कितना अधिक महत्व दिए हैं। हालांकि कृष्ण भावनात्मक अभ्यास में हम इस बात को भी सुनते हैं कि 26 गुणों में सर्वाधिक प्रमुख जो गुण बतलाया गया है वह है कृष्णैक शरणम, कि जो एकमेव केवल कृष्ण का आश्रय ले, यह गुण की प्राधान्यता है। परंतु साथ ही में श्री प्रभुपाद कई स्थानों पर इस बात को उल्लेख किया कि अन्य समस्त गुणों को विकसित करना भी वैष्णव के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद कई स्थान पर यह भी बतलाया कि वैष्णव कौन है, अगर कोई परीक्षा लेना चाहता है तो इस गुणों के द्वारा परीक्षा होती है। वहां पर जैसे हम तिदिक्ष्वाकारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनाम् अजात शत्रुव शांता साधव साधुभूषण श्लोक के संदर्भ में भी प्रभुपाद कहते हैं कि यह परीक्षा है वास्तविक, दिस इज द टेस्ट प्रभुपाद, कि वास्तविक यदि कोई भक्त या वैष्णव है तो कैसे सिद्ध होता है, गुणों के द्वारा। श्री राधा रास बिहारी भगवान की और साथ ही में यह हमारे लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भी है। जब चार कुमार वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे उस समय जय विजय ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अनुमति नहीं दी अंदर जाने की, तो फिर चार कुमारों ने शाप दिया और उस समय फिर भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए और वे भी इसी बात को वहां पर वर्णन करते हैं। वे वहां पर कहते तद प्रासादया मध्य ब्रह्म दैवम परम हिमे, कि मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। वहां पर भगवान नारायण स्वयं कह रहे चार कुमारों से, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आपके चरणों अपराध हुए। हालांकि स्वयं भगवान अपराध नहीं किए थे, परंतु वहां पर वे कहते तद्धीत्यात्मकृतम मन्ये यत् स्वपुंभिर असत्कृतः, स्वपुंभिर मेरे ही सेवकों ने कुछ गलती की है, कुछ उनसे त्रुटि हुई है, तो वो एक तरह से मेरा उत्तरदायित्व बनता है। यन्नामनी च गृह्णाति लोको वृत्ते कृतागसी सो असाधुवादस तत्कीर्तिम हन्ति त्वच्चम इवामयः। वहां पर भगवान नारायण उदाहरण देते हैं, जैसे कुष्ठ रोग यदि कोई शरीर के एक भाग में हो जाए तो वो पूरे शरीर को जो प्रभावित कर देता है, तो वैसे ही यदि मेरा एक भक्त भी अगर आचरण ठीक ना करे तो वह मुझे भी प्रभावित करता है, मेरी एक तरह से अपकीर्ति होती है। और तुरंत वहां पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इसीलिए प्रत्येक वैष्णव को अत्यंत सावधान होना चाहिए, कि यदि कि कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के साथ साथ इन गुणों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ना हो तो इसका एक तरह से उत्तरदायित्व भगवान के ऊपर जाता है, हमारे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते ऊपर जाता है। और वहां प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत पूर्णतः विज्ञान है, जिसे विज्ञान में कोई भी अगर प्रयोग किया जाए तो निश्चित है कि यह उसका निष्कर्ष आना ही है। तो इसी प्रकार से अगर कोई वास्तविक कृष्ण भाव का अनुशीलन कर रहा है तो स्वाभाविक है कि उन गुणों का विकास होना ही चाहिए। तो ऐसे यह जो 26 गुण है, और यहाँ तक स्वयं भगवान भी यहाँ पृथु महाराज को कहते हैं, पूर्व अध्याय में आप श्रवण किए होंगे, भगवान कहते हैं कि गुणशील यंत्रित, कि भगवान प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए तो बताया जाता है कि हे पृथु तुम्हारे जो विशेष गुण हैं उन गुणों को देखकर मैं यहाँ पर प्रसन्न हुआ हूं। और उनके द्वारा आकर्षित हो गुणशील यंत्रित कहते हैं, इन गुणों को देखकर मैं आकर्षित हो गया हूं। अतः हमारे अत्यधिक आवश्यक है कि इन गुणों को हम अपने जीवन में कैसे अनुशीलन करें। तो विशेष रूप से ये भागवत के प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं। इस मराठी में कथन है, थोर महात्म्य होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हा सापडे बोध। वैष्णवों का या महात्माओं का यहाँ जब जीवन देखते तो विशेष से इन गुणों को किस तरह से उनके जीवन में प्रकट किया गया है यह हमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आज के श्लोक में हम देख रहे हैं विशेष से तीन गुणों के विषय में चर्चा की गई है। मैं कुछ वरिष्ठ वैष्णव से पूछ रहा था, उन्होंने जिस तरह से बताया उसके अनुसार हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। वर्षति स्म यथा कामम पर्जन्य इव तर्पयामि, प्रथम गुण यह बतलाया गया पर्जन्य इव वर्षति, जैसे मेघ या बादल वर्षा करते हैं। भागवत में भी दशम स्कंद में वर्णन आता है, जब शरद ऋतु का वर्णन करते हैं तो वहां पर भी कहा गया कि जो उदार व्यक्ति है उसकी तुलना वहां पर मेघ से की जाती है। मेघ से क्यों तुलना की गई है, तो दो गुण बतलाए गए मेघ के। मेघ जब वितरण करता है वर्षा का तो वह कोई भेदभाव करके नहीं करता, सभी को समान रूप से देता है। और दूसरा गुण यह बतलाया कि मेघ का जीवन है वहां पर, वहां जो शब्द का प्रयोग किया सुखदेव गोस्वामी कि मेघ अपना जीवन अर्पित कर देता है। बादलों का जो जीवन है वो जल ही है, यदि जल दे दे तो फिर वो बादल का अस्तित्व ही नहीं रहता है, ऐसे देखा जाए। तो वास्तविक जो उदार व्यक्ति होता है उसका यह बताया गुण बताया कि वहां अपना जीवन भी अर्पित कर देता है अन्यों के लिए, जिसे उदारता कहा गया है। या वैष्णव गुणों की अगर सूची देखा जाए तो चार गुण समान रूप से बताए गए हैं, एक कृपालु और सर्व उपकारक, करुणा और एक वदान्य। एक तरह से देखा जाए तो सभी गुण एक जैसे ही है, परंतु फिर भी चार बार उसका प्रयोग किया गया है ताकि उसका अधिक से अधिक महत्व बताने के लिए, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है वैष्णव की, उदारता या दया होनी चाहिए। और विशेष रूप से सभी का किस तरह से, एक राजा का कर्तव्य यहां बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज के भी प्रसंग में हम देखते हैं प्रथम स्कंद प्रारंभ में, वहां पर भी बताया गया कि महाराज युधिष्ठिर का जब शासन था तो समस्त प्रजा इतनी संतुष्ट थी, कितनी संतुष्ट थी, तो वहां पर केवल एक उदाहरण दिया गया, सर्व काम दामी गाव, काम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दाम। तो वहां पर बताया गया कि इतनी अधिक प्रसन्नता थी कि समस्त गाय मुदा प्रसन्नता के कारण उनके स्तन पूरे भरे हुए रहते थे, और इतना अधिक भर जाते थे कि वो दूध जो है बहते रहता था और पूरा भूमि का सिंचन होता था दूध से, जल से नहीं। इतनी अधिक प्रसन्नता, गाय इतनी प्रसन्न होंगी, एक तरह से एक प्राणी है वो, तो मनुष्य का क्या कहना युधिष्ठिर महाराज के शासन। और वैसे ही यहाँ पर इतिहास में विशेष रूप से यहाँ कुछ उदाहरण, दशरथ महाराज, पृथु महाराज, युधिष्ठिर महाराज उदाहरण दिए गए, जो अत्यंत उदार थे। दशरथ महाराज के विषय में वर्णन किया था, दशरथ महाराज जब बांटते थे, दान देते थे, तो देखते नहीं थे कौन पात्र है कौन अपात्र है, बिल्कुल उदारता से वो सभी को वितरण करते थे। तो इस तरह की उदारता वास्तविक वैष्णव के लिए बहुत ही आवश्यक गुण है, क्योंकि भगवान स्वयं भी इस उदारता को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। जैसे अलग अलग वहां पर प्रसंग हम देख रहे थे कि भगवान की उदारता का, जब जरासंघ भी समस्त राजाओं को कह दिए, तो वह वर्णन आता है कि भगवान उदारतावश वहां पर गए और समस्त राजाओं को मुक्त किया। और साथ ही जब भीष्म पितामह का देह त्याग, अभी जो प्रसंग चल रहा है हमारे भागवत सेमिनार में, भीष्म पितामह भी जब मरणासन्न अवस्था में थे बाणों की शैया पर, तो उस समय बताया कि भगवान उदारतावश वहां पर भी इस गुण का उल्लेख किया गया है कि भगवान कृष्ण उदारतावश वहां पर गए स्वयं दर्शन देने के लिए। और वहां पर जब भीष्म पितामह की अवस्था को देखा तो बताया गया भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे अपनी भक्ति स्तर की दशा को देखकर। तो भगवान भी इस गुण को प्रकट करते हैं, और उदारता का पराकाष्ठा को भगवान प्रकट किए विशेष रूप से हम देखते हैं जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री रूप गोस्वामी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हुए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत पिशे नमः। सबसे बड़ी उदारता या दया कौन सी है, वहां पर बताते हैं कि नमो महावदान्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य कहा गया है, प्रश्न आ सकता है कि क्यों महावदान्य, कृष्ण प्रेम प्रदाय सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को वो बहुत ही सहजता से प्रदान करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हाल ही में जैसे गौर पूर्णिमा हुई, तो आप सभी लीलाओं का श्रवण किए होंगे कि बहुत प्रकट रूप से ये दिखाई देता है गुण उदारता या वदान्य। प्रत्येक लीलाओं में एक एक लीला अगर देखेंगे तो चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य दया करो हो विचार, कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष गुण है वो दया है, उदारता। कितनी अधिक उदारता है, सबसे जगाई मधाई की लीला में हम देखते हैं कि जगाई मधाई जो अत्यंत पतित थे, वृंदावन दास ठाकुर उसका बहुत विशद वर्णन किए कि किस तरह की उनकी पतित अवस्था थी, और उस समय जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहां गए, नित्यानंद प्रभु ने देखा उस पतित अवस्था को, तो दयावश नित्यानंद प्रभु के मन में केवल इच्छा जागृत हुई, यदि चैतन्य महाप्रभु इनका अगर उद्धार कर सके तो वास्तविक संसार जानेगा कि क्या होती है दया या उदारता क्या होती है। और फिर नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने प्रयास किया तो जगह माता एकदम मारने के लिए दौड़ पड़े, तो नित्यानंद प्रभु वापस भाग कर आ गए, परंतु फिर भी मन में उनके विचार चलता रहा बार बार कि किस तरह से इनका उद्धार हो, किससे उनका उद्धार हो। और अंततः पुनः एक बार जब वे प्रयास किए, अकेले गए थे हरिदास ठाकुर, इस बार नहीं गए कि हरिदास ठाकुर सावधान हो चुके थे, कहे कि एक बार तुम्हारे साथ जाकर मैंने गलती की, हॉल में तुम्हारे साथ जाकर मुझे मेरे जीवन भी शायद संकट में पड़ सकता है, इसलिए आगे से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु अकेले जब गए और फिर से जगाई मधाई वहां पर मिले, और जैसे नित्यानंद प्रभु को देखा और पुनः उन्होंने जब कहा कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, जैसे ही सुना तो मधाई ने तुरंत वहां पर जो है प्रहार किया उस मटके से, तो तुरंत रक्त प्रवाहित होने लगा। और जैसे जगाई ने उस अवस्था को देखा नित्यानंद प्रभु की, कि उस अवस्था में भी नित्यानंद प्रभु कृष्ण का नाम नहीं लेकर प्रार्थना करते, जगाई का मन द्रवित हो गया देखकर, और तुरंत रोकने लगा मधाई को, अरे यह तो इतना बड़ा कोई वैष्णव सन्यासी दिखाई दे रहा है और तुम इसके ऊपर ऐसे प्रहार कर रहे हो, यह ठीक नहीं है, वो रोकने लगा। और तुरंत यह चर्चा वहां पर चैतन्य महाप्रभु को तक पहुंच गई, श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु जैसे नित्यानंद प्रभु की दशा को देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए और अपने भगवत आवेश में उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्रों का आह्वान किया, चक्र चक्र वो पुकारने लगे। तो जैसे वहां पर चक्र प्रकट हुआ तो फिर नित्यानंद प्रभु ने याचना की, नहीं नहीं आप जगाई को माफ कर दीजिए, जगाई को क्षमा दान कीजिए, क्योंकि इसने मुझे बचाया है, मेरे ऊपर प्रहार होने लगा। जैसे चैतन्य महापुरुष सुने कि नित्यानंद प्रभु को उसने बचाया है, केवल उस बात को सुनने मात्र से ही चैतन्य महापुरुष बहुत प्रसन्न हुए जगाई के ऊपर, और तुरंत चैतन्य महापुरुष ने वहां पर से अपना कृपा प्रदान की और कहा कि तुम्हें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। केवल कहा श्री चैतन्य महापुरुष ने, कहते ही समस्त अष्ट विकार प्रकट हो गए जगाई में और वहां जमीन पे लोटने लगा, भगवान नाम का कीर्तन कर रहा। और मधाई ने जब इस दृश्य को देखा तो उसका भी हृदय फिर थोड़ा थोड़ा द्रवित हो गया और देखा कि मेरे भाई में इस तरह का परिवर्तन आया विलक्षण, तो वहां जाकर चैतन्य महापुरुष से याचना करने लगा कि आज तक हम दोनों भाई ने सभी कार्य जो है साथ में किया है, पार्टनरशिप में 50-50 का शेयर रहा है, हर पाप हमने साथ में किया, सभी कार्य हमने साथ में किए, और अभी आपने कृपा केवल उसे प्रदान की, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी वहां कृपा प्राप्त हो, मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी मेरे पापों से मुक्त करे, उसे ग्लानि होने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि तुम उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे भक्त नित्यानंद प्रभु के चरण में अपराध किया है। और वहां पर फिर हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु से क्षमा याचना करते हैं मधाई, और अंततः फिर दोनों का उद्धार होता है, दोनों को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। यहां तक तो ये लीला प्रचलित है और प्रत्येक गौर पूर्णिमा को हम निश्चित रूप से श्रवण करते हैं, परंतु साथ ही में इस बार मैं पढ़ रहा था तो मैंने विशेष रूप से जगाई मधाई की स्तुतियों को पढ़ा, जिन्होंने मुझे विशेष प्रेरित किया। जगाई मधाई जब स्तुति करते तो वहां पर वे कहते कि वास्तविक इस संसार में उद्धार इस शब्द की क्या व्याख्या होती है, क्या परिभाषा होती है संसार में, अब पता चला है जब चैतन्य महाप्रभु हुए। और वहां पर वे काफी विश्लेषण करते हैं जगाई मधाई अपनी स्तुतियों में, कहते कि इस संसार में भगवान सदैव उद्धार करने के लिए, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान समस्त जीव का उद्धार करते हैं। भगवान जब ध्रुव महाराज ने तपस्या की तो भगवान ने उसका उद्धार किया, दर्शन दिए, तो कोई विशेष बात नहीं थी क्योंकि तपस्या की थी, तो उसके फल स्वरूप अगर उन्होंने उसका उद्धार किया, उसे अपना दर्शन दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर वे उदाहरण देते अजामिल का, कि अजामिल का भगवान ने उद्धार किया, यह संसार में प्रचलित है, परंतु अजामिल का उद्धार किया यह भी कोई विशेष बात नहीं है जगह में देखते, क्योंकि उसने आपका नाम लिया था, तो ये तो नाम का प्रभाव है, आपकी कोई विशेषता नहीं हुई इसमें, आपके नाम का प्रभाव से उसका उद्धार हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। फिर संसार कह सकता है कि भगवान ने संसार इतिहास में असुरों का भी उद्धार किया, कंस, जरासंघ आदि, शिशुपाल, तो वहां पर जगाई माता कहते उनका उद्धार करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों बड़ी बात नहीं थी? तो जगाई माता कहते हैं कि पहली बात, उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया था, भगवान का स्पर्श उनको हुआ था। दूसरा, उन्होंने धर्म के नियमों के अनुसार युद्ध किया भगवान के साथ। और एक गुण बतला है कि वे अनन्य भाव से भगवान का सदैव चिंतन करते रहे। यहां तक कि नारद मुनि कहते हैं कि जिस तरह से शिशुपाल, कंस आदि ने भगवान का चिंतन किया अनन्य भाव से, वैसा शायद कोई भक्ति के साथ भी ना कर पाए, कि उठते बैठते चलते फिरते सभी जगह उन्हें कृष्ण का स्मरण होता था। कोई भी वस्तु को देखे कंस तो कृष्ण का स्मरण होता था, जल को देखे, अगर मेघ को देखे, सभी जगह कृष्ण ही कृष्ण से स्मरण होते थे। रात्रि को शयन करता था तो वहां पर कृष्ण का स्मरण होता, परंतु भय के साथ होता। या शिशुपाल का उदाहरण दिया जाता कि वहां ईर्ष्या द्वेष के साथ कृष्ण का स्मरण करता था। आचार्यों का कथन है कि शिशुपाल जब बोलना प्रारंभ किया तो उसने केवल एक ही बात सीखी, किस तरह से कृष्ण को गाली दी जाए, और कुछ सीखा नहीं वो, कि माता पिता क्या बोलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। वो सीखा तो सिर्फ इतना ही सीखा कि कैसे कृष्ण की गाली दी जाए। तो सदैव वह कृष्ण के विषय में बोलते रहता, परंतु प्रतिकूल भाव में था। परंतु कैसे भी हो, परंतु कृष्ण के सानिध्य में थे, कृष्ण का वो चिंतन स्मरण करते थे। जगाई माता कहते उन्होंने कुछ तो किया, हमने तो उतना भी नहीं किया। और उसके पश्चात वे कहते हैं कि शिशुपाल, कंस आदि का आपने उद्धार किया, ऐसा संसार में प्रचलित है। लोगों ने देखा कि जब जगाई माता की मृत्यु हुई तो एक ज्योति उनके शरीर से प्रकट हुई जो भगवान के चरण कमलों में प्रवेश की, और कहा जाता है कि उनका उद्धार हुआ। किसने देखा? जगाई माता कहते हैं मरने के बाद किसने देखा है वहां, कहते हैं शास्त्र में केवल कथन है, यानी बाद में हुआ, मृत्यु के बाद हो तो वो कौन सी बड़ी बात है, जीवित अवस्था में तो उनका उद्धार नहीं हुआ। और यहां तक वे कहते हैं कि उद्धार हुआ यानी अधिक से अधिक वैकुंठ की प्राप्ति हुई होंगी, उससे अधिक नहीं उन्हें प्राप्त हुआ। फिर वहां पर जगाई माता उदाहरण देते हैं पूतना बकासुर आदि का, कि ऐसे वसुर थे पूतना बकासुर जो भगवान को मारने के लिए आए थे, तो कहा जाता है उनका भगवान उद्धार किए। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ सेवा जरूर की थी, पूतना ने दुग्धपान, स्तनपान कराया भगवान को, हालांकि मारने का भाव था, भगवान को मारना चाहती, परंतु कम से कम दूध तो पिला रही थी, कुछ तो सेवा की उन्होंने। तो यह सभी कथन वहां पर जगह में था कि इन सभी ने कुछ ना कुछ किया आपके लिए, हमारी यह विशेषता कि हमने कुछ भी नहीं किया आपके लिए, उल्टा आपको और पीड़ा दिया आपके भक्तों को, यह हमारी विशेषता है। परंतु फिर भी आपने क्या हमें प्रदान किया उसके बदले में, बताया जाता है कि इन सभी का आपने उद्धार किया, परंतु अधिक से अधिक आप जो है वैकुंठ की प्राप्ति उन्होंने कराई आपने, परंतु हमें आपने क्या दिया, तो शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्रदान किया जो सर्वोच्च वस्तु इस संसार में है, जिसे आज तक कभी प्रदान नहीं किया था। अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, क्या आज तक कभी प्रदान नहीं किया, ऐसी वस्तु आप हमें प्रदान कर रहे हैं। तो वास्तविक संसार में अब पता चला कि उद्धार किसे कहते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ किया, परंतु क्यों किया, बिना कुछ हेतु से, इसे कहते अहेतु की कृपा, या वास्तविक महावदान्यता किसे कहते हैं, वहां पर जगह ही मदाई कहते हैं। तो यहां वास्तविक भगवान अपनी लीलाओं से प्रकट करते हैं कि किस तरह की उदारता होनी चाहिए, किस तरह का दया भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु किसी भी, कौन पात्र है कौन अपात्र है यह न देखते हुए सभी जीवों पर कृपा करते थे, यह वास्तविक दया दिख रहा था। वास्तविक दया है कि कृष्ण भावनामृत को प्रदान करना। कल ही हम चर्चा चल रही थी हिंसा के ऊपर, वॉयलेंस। तो वास्तविक हिंसा क्या है, तो किसी जीव को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने से रोकना, यही हिंसा है। श्री प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक जीव को पर दया है कि उसे कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जाए, यह वास्तविक दया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी षड गोस्वामियों के जीवन में देखते हैं किस तरह की उदारता उनमें थी। और एक भक्त बता रहे थे, अभी गौर पूर्णिमा को मैं सुन रहा था, श्री राधा रास बिहारी भगवान की, कि श्री चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक जो उदारता है वह मूर्तिमंत रूप में प्रकट हुई है इस संसार में शिल प्रभुपाद के रूप में। बहुत सुंदर वाक्य मुझे लगा कि शिल प्रभुपाद मूर्तिमंत स्वरूप थे, है क्षमा कीजिए, उस उदारता या दया का कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल एक जगह ही मदाई का उद्धार किया जिनमें कोई पात्रता नहीं, कोई योग्यता नहीं थी, परंतु शिल प्रभुपाद ने संसार में असंख्य जीवों का उद्धार किया और उद्धार कर भी रहे हैं। एक भक्त शिल प्रभुपाद को पूछ ले कि प्रभुपाद हमारी क्या योग्यता थी हमें इस कृष्ण भक्ति प्राप्त, हम तो ऐसे पाश्चात्य जगत में आए, कोई योग्यता नहीं थी हम में, परंतु फिर भी हम कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई। वो पूछे क्या योग्यता है, तो शिल प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, तुम्हें मैंने योग्यता प्रदान की तुम्हें, मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो योग्यता, आई हैव गिवन यू द क्वालिफिकेशन, यू डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन। तो और अन्य संसार के समस्त उदाहरणों को देखने के बजाय के अगर हम अपना ही जीवन देख ले, एक बता रहे थे कि महावदान्यता इस शब्द का अर्थ जानना है तो केवल अपना जीवन हम देख ले कि हम किस अवस्था में थे, किस गर्हित जीवन को हम यापन कर रहे थे, और उस जीवन से हम अभी कृष्ण भक्ति में आ गए, भक्तों के संग में, भक्तों के संग में बीच में बैठे हैं, या तिलक कंठी माला धारण कर लिए, या भगवान नाम का उच्चारण कर पा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। यह उदारता है जिसका चैतन्य महाप्रभु के वास्ते उदारता है, हम सभी इस कृष्ण भावना का अनुशीलन कर रहे हैं, तो हमें भी इस गुण को अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर बताया वर्षति स्म यथा काम पर्जन्य तर्पण, इस संसार में जो जीव पीड़ित हैं, जैसे वर्षा का यहाँ पर उदाहरण दिया, वर्षा जैसे जब गर्मी के दिन आते हैं, शुभ सभी प्रारंभ हो चुकी है, तो इतना व्यक्ति जब त्रस्त हो जाता है भीषण गर्मी से, तो वह आतुरता से प्रतीक्षा करता है वर्षा की, मेघ की, और मेघ को देखते बराबर फिर प्रसन्न हो जाते हैं, केवल मनुष्य नहीं पशु भी मयूर आदि नृत्य करने लगते हैं। तो वैसे ही संसार में जो जीव पीड़ित है त्रिताप के द्वारा, तो उनके ऊपर हमने भी विश्व श्री कृष्ण भावना का अभ्यास कर रहे हैं, हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम इसको लोगों को प्रदान करें, इस कृष्ण भावना अमृत को हम उस दया को लोगों में प्रदान करें। कैसे हम वो दया का भाव ला सकते हैं, प्रश्न आ सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद भी तो भगवान के नित्य पार्षद थे, उन्होंने इस गुण को प्रकट किया, परंतु हम कैसे उस दया के भाव को ला सकते हैं। तो वहां पर श्री सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज कहते हैं कि यदि केवल हम जो ऐसे दया को जिन्होंने प्रकट किया है ऐसे महात्माओं के कर कमलों में केवल माध्यम बन जाए, इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द कंपैशनेट सोल, कि जो इतने उदार महात्मा है उनके हाथों में अगर हम केवल माध्यम बने उस उदारता को लोगों में वितरित करने के लिए, तो फिर हमें भी वह गुण स्वाभाविक आ सकता है। शुभ से प्रचार के द्वारा, इस कृष्ण भाव का प्रचार के द्वारा ग्रंथों का वितरण हम करते हैं, तो फिर वहां उदारता हमें विकसित होती है, और कृष्ण सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं उस गुण को देखकर भी। भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं मुझे और कोई व्यक्ति उतना प्रिय नहीं जितना इस संसार में जो कृष्ण भावनामृत को दूसरों को प्रदान करता है। और गुणों का यहां वर्णन किया, समुद्र इव दुर्बोध सत्वे ना चल राड़ी व। दूसरा गुण यहां बताया कि महाराज पृथु का और एक गुण था कि समुद्र के समान थे, इनकी कोई गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकता था। जो वैष्णव होता है या भक्त होता है उसका ये एक गुण है, धीर कहते हैं इसे या गंभीर, कि अत्यंत समुद्र के समान वह गंभीर होता है। जैसे आप यहाँ पर पास में मुंबई में समुद्र के तट पर ही हम बैठे हैं, तो समुद्र की था को समझ पाना इतना सरल नहीं है। तो वैसे ही वैष्णव का गुण बताया गया है, या भगवान की भी यह विशेषता है। जब ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बालों को चुरा लिया और अंततः फिर भगवान स्वयं अपना विस्तार किए ग्वाल बालों के रूप में और ब्रह्मा जी के भ्रम को दूर किए, तो अंततः ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे भगवान से एकदम। तो बतलाया जाता है कि भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, भगवान पूरी तरह से धीर गंभीर बने रहे। तो वहां पर श्री प्रभुपाद जी कहते कि ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कृष्ण मुझसे प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। उनकी इस तरह से जो भगवान भी कभी कभी इस तरह की कार्य करते हैं। अन्यत्र वहां पर लिखा गया है कि शिव से भगवान जब श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के साथ जो लीला में विहार करते थे तो कई बार अन्य ग्वाल बाल भी उसको समझ नहीं पाते, शिव से बलराम आदि। तो भगवान का भी यह गुण है कि भगवान भी जो समुद्र की तरह गंभीर है। तो वैसे ही वैष्णव भी या भक्त में भी यह गुण पाया जाता है कि वह भी जो गंभीर होता है, धीर गंभीर वह भी होता है। विशेष रूप से इसका एक अर्थ यह बतलाया गया है कि वह कृष्ण भावनामृत का अभ्यास या कृष्ण भावनामृत के आस्वादन में इतना अधिक वो लीन हो जाता है कि उससे बाह्य जो भी परिवर्तन होते हैं उससे वो अधिक जो प्रभावित नहीं होता है, या अपने उसके द्वारा वो जो गुण है अलग अलग लक्षणों को प्रकट नहीं करता है वो सौर, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से कृष्ण में लगा रहता है। हम ऐसे एक भागवत के दशम स्कंद में ही बताया गया, गिरयो वर्ष धारा भी हन्यमान न विव्युत अभ्युमान व्यसनैर यथा अधोक्षज चेतसः। कि जैसे यथा अधोक्षज चेतसः, जिसका अधोक्षज भगवान में चेतना पूर्णतः लग चुकी है, वह कभी भी जो है पूरी तरह से गंभीर रहता है और प्रभावित नहीं होता बाह्य कारण से। जैसे वहां पर उदाहरण दिया गया है कि जब घनघोर वर्षा होती है तो पर्वत जो है प्रभावित नहीं होते, पर्वत एक तरह स्थिर रहते हैं। क्षमा कीजिए, तीसरा गुण था मेरु का, उसमें यह श्लोक बताया गया गिरया वर्ष धारा, जैसे पर्वत जो है प्रभावित नहीं होते। तो वैसे ही भक्त का यह तीसरा जो गुण बताया कि वह किसी भी अवस्था में प्रभावित नहीं होते, कोई भी उनके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए परंतु उनका एक गुण होता है कि वो सदैव कृष्णावत का अनुशीलन में लगे रहते हैं। और यह गुण ऋषि से मैं कल देख रहा था शिल प्रभुपाद जी के जीवन में अधिक प्रकट हुआ कि शिल प्रभुपाद जी के जीवन में कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां भी आई परंतु वे सदैव कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार में रत रहे और बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। और कितने ही हैं वहां पर श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में एक कथन मैं देख रहा था, व्यास पूजा पुस्तक में वहां पर लिखा गया था कि वास्तविक स्थिरता किसे कहते हैं, यह श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट किया कि आपने इतना कठोर संघर्ष किया। वहां पर कहते हैं कि आपने हजारों प्रवचनों को दिया, इतने ग्रंथों का लेखन किया और अविरत रूप से आप जो है कई बार स्वास्थ्य जो प्रतिकूल भी था, प्रभुपाद जी को दिल का दौरा पड़ा और अन्य समय पर भी स्वास्थ्य ठीक ना, परंतु फिर भी प्रत्येक अवस्था में आप सदैव जो कृष्ण भावनाओं के प्रचार में पूर्णतः उत्साह के साथ लगे रहे। तो यह आपका गुण यहां पर कहते हैं कि वास्तविक स्थिरता को प्रकट करता है कि कैसे स्थिर बने रहते हैं। तो हम इन जब गुणों को देखते हैं तो हमने अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कैसे इन गुणों का अनुशीलन कर सके, कैसे इन गुणों को बढ़ा सके। और विशेष से दो गुण वहां पर श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि कैसे यह वैष्णव के जो गुण है वह कैसे विकसित हो सकते हैं। तो पहला बताया गया साधु शास्त्र, एक श्लोक प्रभुपाद वहां कहते हैं कि साधु की विशुद्ध से सेवा महत सेवायाम द्वार आहुर विमुक्त है, कि महत सेवा जब साधु महात्माओं की सेवा की जाती है तो स्वाभाविक जो है वैष्णव गुण हमारे जीवन में, जो वैष्णव में जो गुण प्रकट होते हैं, यदि उन वैष्णव की वो सेवा की जाए तो स्वाभाविक वह गुण भी हमारे जीवन में आ सकते हैं। और दूसरा वहां पर बतलाया गया है कि शास्त्र का अध्ययन करके, विशेष से भागवत का, जब भागवत का हम अध्ययन करते हैं और भगवान के भक्त की उस कथा को श्रवण करते हैं बार बार, तो उसके द्वारा भी वह गुण हमारे जीवन में आ सकता है। तो इस तरह से और भी आगे अन्य गुणों का भी वर्णन यहाँ किया जाएगा पृथु महाराज के। तो क्रमशः हम एक एक गुणों को प्रत्येक दिन यहाँ सुनेंगे और भी अन्य कई वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा, और प्रयास करेंगे कि इसको कितना अधिक से अधिक अपने जीवन में पालन कर सके, कितना अधिक ला सके। हरे कृष्ण। किसी कोई टीका टिप्पणी हो तो प्रयास करेंगे प्रश्न का उत्तर देंगे।
जैसे आपने बताए हैं कि एक बादल जैसे सब जगह अपनी जो जल है वो वितरण करता है बिना कोई पक्षपात से, तो लेकिन ऐसा बताया गया है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं, इसीलिए वो कभी भक्ति स्वयं नहीं देते हैं अपनी भक्ति, लेकिन उनके भक्ति जो है उनके भक्तगण जो भक्त लोग हैं वो ही प्रदान करते हैं, क्योंकि वो पक्षपात कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु है श्रद्धावान उन्हीं को भक्ति देते हैं, तो इस तरह वो पक्षपात करते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि वो नहीं करते हैं, तो इस चीज को हम कैसे समझें?
कृष्ण भक्त के गुणों का वर्णन भागवत में किया गया है, किस तरह से व्यवहार करते, तो प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, भागवत के एकादश खंड में कि वे भगवान से प्रेम करते हैं, वैष्णव से मैत्री करते हैं, जो इस संसार में अज्ञानी हैं, इनोसेंट हैं, उन पर वो कृपा दिखलाते हैं, कृष्ण भावना को प्रदान करते हैं, और जो भगवत विद्वेषी है भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो वहां पर वर्णन आता है कि वास्तविक यदि वो उपेक्षा कर रहे हैं किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति की, तो वह दया है उसके ऊपर, वह भी दया का ही एक प्रकार है, क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसे अगर वहां प्रयास करेंगे उसकी इच्छा के विपरीत, उपदेशो ही मूर्खाना प्रकोपायो शांत, कि वो मूर्ख व्यक्ति उसको यदि आप उपदेश दो तो अधिक वो क्रोधित हो जाए, जैसे सर्प का उदाहरण दिया, सर्प और अधिक उसका जहरीला हो सकता, तो वैसे ही भक्तगण भी यदि उपेक्षा करते हैं कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति की, तो विशेष उस पर दया है, कि यदि हम अधिक उसे कृष्ण भगवान का प्रचार करने प्रयास करेंगे तो वह अधिक ईर्ष्या करता है, उसका जो है द्वेष है अधिक बढ़ जाता है, तो वह अधिक ना बढ़े इसलिए उससे अधिक वार्ता ना करे, उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं, या किस प्रकार से वह कृष्ण भगवान को अंगीकार कर सकेंगे, वैसे अलग अलग फिर उपाय ढूंढे जाते हैं, तो सभी अप्रत्यक्ष रूप से दया का ही प्रकार है। और कोई अगर कुछ टीका टिप्पणी करना चाहे, ओके
प्रभु, अगर कोई वैष्णव दूसरा वैष्णव का अपराध माफ नहीं करता है तो कभी अच्छा वैष्णव बन सकता है क्या?
हमें अपने यदि वास्तविक वैष्णव है तो स्वाभाविक ही क्षमा करेंगे ही, क्षमा करना दूर की बात है, वास्तविक वैष्णव जो होता है वो अपराध को लेता भी नहीं है, अपराध को ग्रहण भी नहीं करेंगे, तो हमें अपने निजी जीवन में अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी तो हमें अपना बारे में सोचना चाहिए कि हम अगर कोई हम त्रुटि कर ले हमारे साथ व्यवहार में तो हम उसको अपराध न माने, या अपराध मान लिया तो क्षमा कर दे, कोई दूसरा मुझे क्षमा कर रहा है नहीं तो वो वैष्णव नहीं हुआ इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए, यानी जैसे हम सुन रहे थे भक्ति बृहद भागवत महाराज के द्वारा कि वैष्णव गुणों का जब वर्णन सुनते हैं या वैष्णव शिष्टाचार आदि को हम सुनते हैं तो इसलिए सुनते हैं कि हम अपने जीवन में उसे अंगीकार कर सकें, ना इसलिए नहीं कि दूसरों को चेक करने के लिए, दूसरों को ढूंढने के लिए कि हाँ वैष्णव का गुण होता है कि उसने क्षमा करना चाहिए, तो ये व्यक्ति जो क्षमा नहीं कर रहा तो यह वैष्णव नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। तो स्वाभाविक क्षमा कर देते हैं वैष्णव, तो जो वास्तविक भक्त हैं।
हरे कृष्ण।
अच्छा,
बहुत अच्छा क्लास दिया आपने, बहुत सुंदरता से करुणा के बारे में बताया। करुणा और कॉम्प्रोमाइज, इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपैशन एंड कॉम्प्रोमाइज ऑन द फॉल्ट?
कॉम्प्रोमाइज
मतलब कभी कभी कोई बहुत बुरे कार्य करता है, उसको हम लूजली डीलिंग दैट मैटर एंड बीइंग कॉम्प्रोमाइजिंग, ओके मर्सीफुल, बीइंग मर्सीफुल।
करुणा का सरल अर्थ कहा जाए तो उसे कृष्ण भावना रूप में प्रगति करने के लिए मदद करना, यह सरल अर्थ है। यदि हम कॉम्प्रोमाइज से क्या कहें, ढिलाई कह सकते हैं व्यवहार में, कभी कभी अधिक उदार बन गए, कुछ जो अतिशय उदारता कि हाँ वो कृष्ण का अभ्यास भी ठीक से नहीं कर रहा है या अपराध भी कर रहा है तो उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, तो अप्रत्यक्ष दृष्टि से वो एक तरह हिंसा हुई, वह दया नहीं हुई या उदारता नहीं हुई। फिर वास्तविक दया है तो उसे अगर प्रताड़ना भी दी जाए ताकि वो कृष्ण भावना में अगर प्रगति करे, उसके लिए अगर हम कुछ अगर शिक्षा दंड भी दे तो वह भी दया का ही स्वरूप है उदारता का। तो उदारता विशेष रूप से जो कृष्ण भावना में प्रगति के लिए सहायक हो वह प्रकार। और कोई हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, संवेद गौर भक्त वृंद की, शिल प्रोपाद की, गौर प्रेमानंदे।